अगली सूरत अल अराफ है। थोड़ी सी आपको इस सूरत की झलकियां दे दूं कि हम इस सूरत में क्या करने वाले, क्या पढ़ने वाले। तो तरतीब में तो आप देख ही रहे हैं कि सूरत जो है वो सूरत अल अनाम के बाद आ रही है। इस सूरत की भी बहुत खूबी है। अल आराफ, वो जगह जहां पे उन लोगों को रोक दिया जाएगा जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो लोग होंगे कि जो वहाँ रोक कर क्वेश्चनिंग किए जाएंगे कि बताओ तुमने जिंदगी कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी। आज एक छोटी सी नेकी को हम हकीर जानते हैं सिर्फ इसलिए कि नहीं वजह ये, अभी नहीं, मूड नहीं, संजीदगी नहीं, वो नहीं, ये नहीं, और वहां जाकर क्या कुछ होने वाला है। तो सूरत अल अराफ बड़ी अहम सूरत है। याद रखिए कि सूरत बकरा के साथ इसका मिजाज कुछ इस रंग से मिलता है कि वहां बनी इसराइल की बातें थी, यहाँ बनी इस्माइल की बातें हैं। सूरत अल अनाम में कौमों का थोड़ा सा तذکرہ हुआ था आयत 6 में। सूरत अल अराफ में यहाँ अब आपको 6 नबियों का तذکرہ मिलेगा, उनकी दावत क्या थी, और फिर 6 कौमों की हलाकत का किस्सा मिलेगा। फिर इस सूरत अल अराफ का इससे अगली सूरत यानी सूरत अनफाल के साथ रब्त ले लीजिए। इससे अगली सूरत अनफाल है जिसमें जिहाद का हुक्म है। सूरत अल अराफ में मुजरिम कौमों की अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त यानी डायरेक्ट हलाकत का बयान है, और अगली सूरतें यानी अनफाल और तौबा में मुजरिमों की मुसलमानों के हाथों बिलवास्ता, आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट हलाकत का तذکرہ। ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर के आखिर में नाजिल हुई। आप महसूस करेंगे इस दर्द को भी, यानी आप कह सकते हैं कि सूरत अल अराफ आखिरी सूरत है जो अल्लाह के नबी के मक्का के आखिरी दौर जो 11 से 13 नबी में थी, हिजरत से बिल्कुल पहले नाजिल हुई, और उसी दौरान सूरत अल अनाम की कुछ आयात और सूरह हज की भी इब्तदाई आयतें नाजिल हुई। ये वो दौर था जब नबी सल्लम के कत्ल के मंसूबे बन रहे थे। कुरैश मक्का को कौमों की हलाकत की तारीख और उसके असबाब बताकर वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुमने इस नबी को हाथ भी लगाया ना तो कौम नूह से लेकर आखिर वाली कौमों तक तुम भी तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। और फिर सूरत के आखिर में अल्लाह के नबी और अहले ईमान को सब्र और इस्तकामत की दावत है। एक और छोटी सी चीज़ इस सूरत से मुतल्लिक नोट कीजिए, अभी आने लगी है। शैतान, शैतान और शैतान, इबलीसियत बामुकाबला आदमियत, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आयात हैं, और ख़ास तौर में फिर इसमें हमें लिबास और हिजाब के बारे में बराहे रास्त पहली दफ़ा गाइडलाइन मिलेगी। कोई आपसे पूछ सकता है कि आपने दौरे कुरान किया है तो क्या समझ आया, तो आप कहेंगे कि 7 सुपारों में तذکرہ भी नहीं हुआ कि क्या पहनो और क्या ना पहनो। हम दीन के नाम पर सबसे पहले इस तरह की बातें करने लगते हैं जबकि अल्लाह ने आज 8वें पारे में हल्का सा उसका तذکرہ करना है। और अल्लाह का कानून हलाकत, लॉ ऑफ इनिहिलिएशन और लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट, कानून इस्तेबदाल, इसी सूरत का एक मेन थीम है। सूरत खुद से इसका अंदाज बहुत मिलता है। दोनों में 8 टॉपिक हैं और शुरू और आखिर भी मिलता है, और 6 कौमों का किस्सा है। आइए ज़रा सा इसको तर्जमे के साथ समझते हैं और दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह अब हमें ये दौरे कुरान के बाद बाकायदा कुरान पाक को पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमा। आखिर कब तक हम इससे गाफिल रहेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत अल अराफ, अलिफ लाम मीम स्वाद, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुम फी सदरिका हरज। 1 से 10 तक रुकू नंबर 1 है। अल्लाह ताला के एहसानात हैं। अलिफ लाम मीम स्वाद हरूफ मुकत्तात हैं। ये किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई कि आप इसके ज़रिए से डराएं, सो आपके दिल में इससे बिल्कुल तंगी ना हो, और नसीहत ईमान वालों के लिए। तुम लोग इसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है। सोचिए कहाँ से आया ये खत, रब का पैगाम बंदों के नाम। हम इसकी कितनी कदर करते हैं, ये सोचने की बात है। और अल्लाह को छोड़कर मन घड़त सर परस्तों की पैरवी मत करो, तुम लोग बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हो। और बहुत बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और इन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा। ये ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे, बस जिस वक्त इन पर हमारा अजाब आया इस वक्त इनके मुंह से, सिवाय इसके और कोई बात ना निकली कि वाकई हम जालिम थे। फिर हम इन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम पैगंबरों से ज़रूर पूछेंगे। फिर हम चूँ के पूरी खबर रखते हैं, इनके रूबरू बयान कर दें, और हम कुछ बेखबर ना थे। और इस रोज़ वज़न भी बरहक होगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा, वल वज़्नु यौमा इज़िन अल हक। फिर जिस शख्स का पल्लड़ा भारी होगा, बस ऐसे लोग कामयाब होंगे, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा, बस ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया। बस अब इसके के हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे, और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामाने रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। और चूंकि शुक्र कम है तो फिर शिर्क ज़्यादा है। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ है सूरत का। ईमान से मुतल्लिक एक आयत, किताब व नुन्ज़िला इलैक, पैगाम क्या है? कुरान का पैगाम पहुंचाने में हिचकिचाहट नहीं करनी, यानी कोई चीज़ आपको रुकावट न बने इस किताब को आगे पेश करने में। फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या हैं? कि शरीयत के किसी हुक्म को लोगों के डर से छुपाना नहीं, नेकियां करते वक्त अपनी नीयत को खालिस रखना है, अल्लाह की नेमतों को इसके बताए हुए तरीकों के मुताबिक इस्तेमाल करना। इसमें चूंकि बात आई वजनों के हक होने की, तो वजन किस अमल का बड़ा होगा? नंबर एक, जो इखलास नियत से किया जाए सिर्फ अल्लाह के लिए। फिर जो मुश्किल हालात में किया जाए, अपनी शाकिला से खिलाफ होके किया जाए। कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, फजर से पहले उठे होते हैं, उनके लिए फजर पढ़ना कोई मुश्किल नहीं। कुछ को नींद ही घेरे देती है, जो सुबह सोने के आदी है, उसकी फजर का अजर पहले की फजर से ज्यादा होगा। आप देखिए कि इस पे एक छोटी सी एनालॉजी लीजिए कि आप और मैं कोई भी नेकी करके मान ना करें कि मैं बहुत नेक हूँ, मैंने 7 सपारे पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए। आपके इस 5 तोले का एक सेट हो, किसी ज़रूरत के तहत आप उसको बेचना चाहें। आप सोचते हैं कि 2 लाख का तोला है एक सोना, 5 का होता ये कि 10 लाख तो मुझे मिल ही जाएंगे, ज्वेलर के पास वो सेट ले जाएं। क्या आपको वो 10 लाख की गट्ठी पकड़ा देता है? जाती कहेगा, बीबी इसकी डोरी काटो, चलो ये जो नीचे मोती लटक रहे हैं ये काटो, अच्छा ये सारे नगीने निकाल दो, अच्छा ये पुराने और नए सोने का फर्क निकालो, इसमें से खोट निकालो। वो 5 तोले में से आप 2.5 तोले के पैसे भी लेके आ गई तो बड़ी कामयाब है, बल्कि 60% जाता है, 40% के आपको पैसे दें तो बड़ा ही ईमानदार ज्वेलर होगा। आपके मेरे 5 तोले के आमाल क्यामत के दिन इससे भी ज्यादा कीनली ऑब्जर्व किए जाएंगे। दिखावा कितना था, रिया कितनी थी। किसी के लिए आसान है हालात, किसी के लिए मुश्किल। कोई करीब से आता है, कोई दूर से आता है। किसी के घर वाले मुआविन नहीं बल्कि फोर्स करते हैं कि जाओ सीखो, किसी के रिजिस्ट करते हैं। तो दुआ कीजिए कि मेरी आपकी ये छोटी छोटी नेकियां क्यामत के दिन बड़ी बने, ना के पता चला इतना बड़ा सेट बेच के अंदर से कुछ भी नहीं निकला। आगे देखते हैं रुकू नंबर 2:11 से 25, 11 to 25। यहाँ से अब दोबारा आपके मेरे बाप आदम और हम सब के दुश्मन इब्लीस का किस्सा है। शजरे ममनुआ के जरिए आजमाइश। शजरे ममनुआ क्या है? प्रोहिबिटेड ट्री। वलकद खलकनाकुम सुम्म सव्वरनाकुम सुम्म कुलना लिल मलाइकत इस्जुदू ली आदम। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, पर सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। हक ताला ने फरमाया कि तू सजदा नहीं करता तो तुझको इससे कौन सी चीज़ रोक रही है, जबकि मैं तुमको हुक्म दे चुका हूँ। कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया और इसको आपने खाक से पैदा किया। हक ताला ने फरमाया, आसमान से तू उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकबर करे, बस निकल, बेशक तू जलीलों में से है। इसने कहा, मुझको मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझको मोहलत दी गई। इसने कहा, बस अब इसके कि आपने मुझको गुमराह किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी और इनके पीछे से भी, इनकी दाई जानिब से भी और इनकी बाई जानिब से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। जो शख्स इनमें से तेरा कहना मानेगा, मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा, और हमने हुक्म दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों खाओ और इस दरख्त के पास मत जाओ वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ, कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ और इन दोनों के रूबरू कसम खा ली कि यकीन जानिए मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। इसको हाईलाइट कीजिएगा। बस इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया, बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गईं और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे और इनके रब ने इनको पुकारा क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका और ये ना कह चुका कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने कहा ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। क्या कहते हैं इस दुआ को? दुआए आदम। काला रब्बना जलमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। शऊर से दुआ मांगिए अपने लिए और नोट कीजिए। इंसान को पहली दुआ मग़फ़रत की सिखाई, तौबा की। और तौबा कौन करेगा? जिससे गुनाह होगा करेगा नहीं, जिससे गुनाह होगा। अल्लाह ने ये दुआ सिखाकर बता दिया कि इंसान के खमीर में गुनाह करके तौबा करना अपने बाप की निस्बत से मौजूद है। आज भी इंसान जब गुनाह करता है ना तो उसके बाद वो तौबा करना चाहता है। आपका मेरा काम क्या है? फैसिलिटेट करें, गुनाहों में डूबे हुए लोगों को कुरान की महफिलों में लाएं, उनको कुरान के लिंक दीजिए। क्या पता कि वो इस वक्त आपके लिए कितना बड़ा सदका जारिया बन जाए। हक ताला ने फरमाया नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम बाहम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करना है एक वक्त तक। फरमाए तुमको वहाँ ही जिंदगी बसर करना है और वहाँ ही मरना है और इसी में से फिर निकाले जाओगे। इबलीस का किरदार खुल कर इनायतों में सामने आ गया। वाक़या तो सूरत बकरा में भी आया था। पूरे कुरान में 9 जगह ये किस्सा हम पढ़ने वाले हैं। आज दूसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा इबलीस की इबलीसियत पे बात करते हैं। तसव्वुर की निगाह से सोचिए, अल्लाह ने हुक्म दिया फसजुदू, सजदे में जाओ, सब फरिश्ते चले गए और ये अंदर अकेला खड़ा है, स्टैंडिंग इन अ क्राउड। सजदा ना करके नुमाया ना हुआ होगा। अगर आज का दौर होता तो लोगों ने कैमरे निकालने थे और वीडियो बनानी शुरू हो जानी थी, क्योंकि आज हम ऑब्सेस्ड बाय सेल्फी कल्चर है। अल्लाह ताला ने यहाँ एक बात की, सवरनाकुम, तुम्हारी सूरतें मैंने बनाई, तो मैं बच्चियों को और बच्चियों की माँ को भी कहूँगी कि शक्लों को क्रिटिकली डिस्कस ना किया करें। पैदा होती बच्ची की शामत आ जाती है, रंग दबा हुआ है, नाक मोटी है, कान बतले हैं, पता नहीं दिल गुर्दा दिखता होता तो उस पर भी हम कमेंट्स देते। अल्लाह का फैसला है। सूरह इन्फितार में अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें पैदा किया, खलका का फसवा का फादलक फी अई सूरत माशा रकबक, जैसा मैंने चाहा। तो लिखिए आपकी मेरी सूरत अल्लाह का फैसला है। इसके ऊपर तनकीद करना तकदीर के खिलाफ होने की दलील है। और फिर शक्लें तो लोग पहले भी बनाते थे, तस्वीरें भी दिखाते थे, लेकिन जो आज के आपके फेमस कैमरों ने फोटोग्राफी को एक लड़की को मॉडल और अल्लाह रहम करे किसी को बिल्ली और कुतिया बना दिया, उसका क्या कहा जाए? इससे अपने आप को निकालिए। आपकी मेरी प्रोफाइल्स पे हमारी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। कल घर के ड्राइंग रूम में सजती थी शादी की तस्वीर। ड्राइंग रूम वैसे ही खुलता कम था, कोई बड़ा खास मेहमान आता है खुला बैठा देख गया, वो भी शर्माते हुए क्या देखता होगा कि आपकी बहू बेटी की तस्वीर लगी है या किसकी है। आज के ड्राइंग रूम की दीवार आपकी मेरी वॉल बन चुकी है, आपका मेरा प्रोफाइल बन चुका है। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि अपनी तस्वीर लोग क्यों लगाते हैं। जिस जिसके पास आपका कांटेक्ट है ना, उसको पहुंच गए। सिर्फ आप किसी के प्रोफाइल को देखकर उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोच लेते हैं। कभी किसी प्लम्बर को आपने अपना नंबर दिया, सेव कर लिया उसने, वो आपके वो सारे कपड़े देखेगा, वो आपके हाल हुलिये देखेगा, वो आपके स्टेटस पढ़ेगा, वो आपकी पोस्ट को पढ़ेगा। दिल मानता, बेटियों को या मर्दों को लड़के सब देखे, कोई बिकने की चीज़ है, कुछ सजने की चीज़ है, ये कोई शो पीस है। आज की इस चीज़ ने आज कितनी बच्चियों को एहसास महरूमी में डाल दिया। खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? टली करती हैं, उसकी देखो मेरी देखो, और जो उसकी होती है वो उसकी असली नहीं होती, उसने नीचे से कैमरे से चूज की होती है कि बार्बी दिखूं, कि ब्लैंड आइज दिखूं, कि ब्लू आइज दिखूं, कि मैं ऐसी दिखूं, यंग दिखूं। कई रिश्ते होके टूटे, शादियां होके छूटी हैं, कि तस्वीर तो कुछ और थी, असल तो कुछ और है। क्या ये शक्लें जो लोगों को दिखानी है वो अहम है, या फिर वो दिल और आमाल जो अल्लाह देखता है, शक्लें और सूरतें नहीं देखता? फिर शैतान के कुछ रवैये थे इसमें, गुनाह करके इस पे इतराना और इसके हक में दलाइल देना, ये शैतानी रास्ता है। गुनाह के बाद एहसासे नदामत होना और तौबा इस्तिग़फ़ार करना, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। फेथ इन एक्शन, अपनी नेमतों पर तकबर नहीं करना, गुनाहों पर इतराना नहीं, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाना, गुनाहों की दलीलें यानी लॉजिक्स पेश नहीं करनी। बंदा गुनाह करे और डरे, अल्लाह उसको बचा लेगा, और अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में शामिल करे। आगे रुकू नंबर 3, 26 से 31, 26 to 31। यहाँ लिबास का तस्करा बाज़ाब्ता तौर पे पहली दफ़ा आने लगा है। टॉपिक है, शैतान गुमराह लोगों का रफीक बन जाता है। या बनी आदम क़द अन्ज़लना अलैकुम लिबासा, ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और जीनत का भी सबब है, और तकवा का लिबास इससे बढ़कर है, ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि याद रखें। ए औलाद आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाल दे, जैसा कि इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत में इनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि वो इनको इनकी शर्मगाहें दिखाए। वो और इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम इनको नहीं देखते। हमने शैतीन को इन्हीं लोगों का दोस्त बनाया जो ईमान नहीं लाते, और वो लोग जब कोई फोहश काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ने भी हमको यही बताया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह फोहश बात की तालीम नहीं देता, कि अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते। आप कह दीजिए, मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो, और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि इस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था, इसी तरह तुम दोबारा पैदा होगे। बास लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी है और बास पर गुमराही साबित हो गई। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शयातीन को दोस्त बना लिया और ख्याल रखते हैं कि वो राह रास्त पर हैं। ऐ औलाद आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। कितनी प्यारी आयतें, तर्जमे से ही सारी बात समझ आ रही है। ईमान से मुतल्लिक एक आयत 27 आराफ, पैगाम क्या है, लिबास का बुनियादी मकसद सतर पोशी और खूबसूरती उसके साथ है। हम सब इससे अमल की बात लें, अपने लिबास को देखें। देखिए लिबास कैसा हो क्या हो, यहाँ जो हो रहा है ना जिक्र, ये खवातीन का खवातीन के सामने है। आम लिबास, उमूमी लिबास, जिसको आप कह सकते हैं कि घर वालों के सामने क्या पहनो। सूरत नूर में बताया जाएगा कि घर के गैर महरमों के सामने क्या पहनो, और सूरत अलहज़ाब में सिखाया जाएगा घर से बाहर जाते हुए क्या करो। दैट्स इट, वेरी सिंपल, 2 + 2 का फार्मूला। इस पे लेक्चर भी मौजूद है, तीनों आयतों को इकट्ठा करके एक लेक्चर बना था, उससे फ़ायदा उठा लें। अमूमी तौर पे तीन लफ्ज़ याद रखिएगा, आरइश, ज़िबाइश और नुमाइश। आरइश भी जायज़ है, ज़िबाइश भी जायज़ है। अब ये दोनों क्या बलाएं होती हैं? आरइश क्या है कि आप खूबसूरत सा कपड़ा खरीदें, महीन, सॉफ्ट, सिल्क, कीमती खरीद सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ज़िबाइश क्या है, उसको सजाने में उबर मोती सितारे भी लगा लें, दबकी सलमा काम करा लें। ये भी जायज वो भी जायज, कोई गुनाह नहीं मोती सितारे लगाना, लैस लगाना, डोरी लगाना, लेकिन एक तीसरी चीज है नुमाइश, ये जायज नहीं। आप मॉडल बनकर फिर रही हैं, आप लोगों को झुलाने के लिए पहन रही हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए पहन रही हैं, और ये पहले पहन लिया था, एक ही बार पहनना है। एक भाई की शादी का जोड़ा क्या आप अपने दूसरे भाई की शादी पे पहन सकती हैं? किन खवातीन की याददाश्त इतनी तेज है कि उनको याद रहे कि 2 साल पहले आपने यही पहना था? उनको तो याद नहीं रहता कि इस वक्त दौरे कुरान हो रहा होता है। अच्छा, वो बहुत सारे फ्लायर थे, पता ही नहीं चला। उनकी तो बेचारियों की याददाश्त नहीं, आप कहते हैं याददाश्त नहीं अच्छी, लेकिन वो वीडियो में जो आ गया, तो वीडियो में आ गया तो जुर्म है। चलिए, आप अपने भाई की शादी पे जो जोड़ा पहनना है वो किसी दोस्त को दे दें, वो आप अपने भाई की शादी पे पहन ले। हर भाई की शादी पे हर दोस्त पहन ले, क्या हर्ज है? एक जोड़ा भाइयों की शादियों का बना ले, एक नंदों की शादियों का बना ले। ये तो जुल्म है ना कि आप एक लिबास 5 लाख रुपए का बनाकर 5 घंटे पहने और वो उसको हैंग कर दे सूली पे चढ़ा हुआ। हैंगर को जाके आज गौर से देखिएगा, वो सूली है। अमूमी तौर पे लिबास में सादगी इख्तियार करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये फर्ज नहीं है और ये नेकी भी नहीं है। ये तबीयतें होती, कुछ सुस्त होते हैं, कुछ का टेस्ट ही अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छे से अच्छा पहन ले फिर भी नहीं जचता, कुछ आमसा पहन ले उनको जचता है। तो दिस इज नॉट क्वेश्चन, इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हमारे इंडो पाक का अक्सर कल्चर इसी के गिर्द घूमता है। तो ज़रूरत इस बात की कि नमूदो नुमाइश नहीं करनी और अल्लाह की हदों को पामाल नहीं करना। आगे है रुकू नंबर 4, 32 से 39। मोमिन ही अल्लाह की रहमत के हकदार हैं। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क। यहाँ आप देखिए डांट है अल्लाह की तरफ से, खास तौर पे उन लोगों को जो दीन के नाम पे लोगों को डिस्करेज करते हैं इन सारी चीजों से फायदा उठाने से। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला के पैदा किए हुए असबाब जीनत को, जिनको इसने अपने बंदों के वास्ते बनाया है, और खाने पीने की हलाल चीजों को किस शख्स ने हराम किया है? अब जरा सवाल देखिए, क्वेश्चन मार्क है। अल्लाह कहते कौन है जो मेरे बंदों के ऊपर ये खाना पीना मना करते हैं? देखिए, एक सवाल लीजिए, किसी ने आपको कोई चीज दी हो, या चले छोड़े आपने किसी को दी और वो उसको इस्तेमाल करे, क्या लगता है आपको, खुशी के गुस्सा? आपने जोड़ा दिया, किसी ने पहन लिया, आपने खाना दिया, उसने खा लिया, आप खुश हो, और अल्लाह लोगों को खाता देकर गुस्सा करे, पहनता देकर गुस्सा करे, गलत तरीका है। असल में इन्हीं चीजों की वजह से फिर हम दीन की एक बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर बन जाते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कौन है भाई जो ये फतवे देता है? आप कह दीजिए ये चीजें इस तौर पर के क्यामत के रोज खालिस होंगी अहले ईमान के लिए, यानी दुनियावी जिंदगी में मोमिनों के भी हैं। हम इसी तरह से तमाम आयात को समझदारों के वास्ते साफ साफ बयान करते हैं। आप फरमा दीजिए कि अलबत्ता मेरे रब ने हराम किया है। अब लिस्ट है, पहले हराम नहीं थी, वो हलाल है। हराम क्या है? इन तमाम फुहिश बातों को जो ऐलानिया है और जो पोशीदा है। अब आप खुद सोचते जाइए, खुलकर गुनाह क्या होते हैं और छुपा कर क्या होते हैं, अकेले के गुनाह या महफिलों के गुनाह। और हर गुनाह की बात को, और नाहक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसके अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात न लगा दो जिसको तुम जानते नहीं, और हर गिरोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है, बस जिस वक्त इनकी मियाद मुअय्यन आ जाएगी, इस वक्त एक साथ ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो तुम ही में से हों, और जो लोग हमारे अहकाम तुमसे बयान करें, तो जो शख्स तकवा इख्तियार करे और दुरुस्ती करे, इन पर कोई खौफ और अंदेशा ना होगा, और जो लोग हमारे इन अहकाम को झुठलाएं, इनसे तकबर करें, वो लोग दोजख वाले होंगे और इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बस इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बतलाए? इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब से है वो इनको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने आएंगे, तो कहेंगे वो कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे? वो कहेंगे कि हमसे सब गायब हो गए, और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं, जिन्नात में से भी और आदमियों से भी, इनके साथ तुम भी दोजख में जाओ, जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल होगी अपनी दूसरी जमात को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब इसमें सब जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, बस इनको दोजख का अजाब दुगना दे। अल्लाह ताला फरमाएगा सबका ही दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं। और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, बस तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का मजा चखो। आपने देखा कि जहन्नुम के अजाबों में से एक अजाब झगड़ों का है। जैसे घरों में झगड़े हो ना तो घर जहन्नुम बन जाते हैं, जहन्नुमी आपस में लड़ रहे होंगे। हमने इन आयतों में देखा। एक आयत थी इसमें ईमान से मुतल्लिक, 32 आराफ, कुल मन हर्रम ज़ीनतुल्लाहिल्लती अख़रजली इबादी। इसका मेन थीम क्या है? तरके दुनिया की नफी है। देखिए कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें कुछ खास हालात में अल्लाह के नबी की फरमाई हुई, उसको आप आम हालात पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कुछ हालात थे, कुछ वक्त थे, कुछ तकाजे थे। तो लिहाजा फेथ इन एक्शन क्या है? अल्लाह की हदों में रहकर जीनत की चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, खाम खा खुशकी ना आए। आपको अल्लाह ताला खुश देखना चाहता है, हंसता बोलता देखना चाहता है। मसला क्या है कि घर में तो हम जले भुने और लहसुन प्याज की बुओं में बसे हुए कपड़े पहनते हैं। लिपस्टिक लगा लें तो बच्चे कहते हैं अम्मी कहाँ जा रहे हैं। अच्छे कपड़े पहन ले तो मियाँ साहब कहते हैं मुझे पता है अब तुम मुझे कहीं लेके जाओगी। आप कहेंगे नहीं आप घर रहेंगे मैं जा रही हूँ, आप वो कल की दाल खा लीजिएगा, मेरी आज एक दावत है। ये गलत है। किसी भी फैशन या ट्रेंड को दीन से परख कर अपना लीजिए। अल्लाह ने बहुत वाजे दिए और मैं आपको यही दे देती हूँ, दो लफ्ज़ लिखिए, शफाफ ना हो और वसाफ ना हो। शफाफ कहते हैं सी थ्रू को और वसाफ कहते हैं स्ट्रेची को। जिस्म पे जो कपड़ा पहनना हो उसमें से जिस्म ना छिलके, इतना थिन इतना सॉफ्ट ना हो। और स्ट्रेची से मराज ये कि वो जिस्म से जुड़ा हुआ चिपका हुआ ना हो। अब आप आज के पजामों को उस पर देख लें, लॉन की पतली कमीजों को चिपकी भी देख लें, छेद लगे हुए टखनों से ऊंचे पजामे और पूरी टांग के बीच में एक सीढ़ी वाली लैस लगे हुए पजामों को देख लें। नमाज कहाँ होनी है, उसे तो सतर ही नहीं पूरा होता। ये गलत है। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। आगे रुकू नंबर 5, 40 से 47। ईमान वालों पर अल्लाह तला के इनामात का तस्करा है। इन लजीन कज़बू भी आयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस्समा। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इनसे तकबर किया, इनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में ना जाएंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके के अंदर से ना चला जाए। और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। इस आयत पे कभी सुनना हो ना तो जर्नी ऑफ द सोल, मरने वाले की रूह किधर जाती है, इस आयत पे बयान किया जाता है। अमूमन इनके लिए आतिशे दोजख का बिछोना होगा और इनके ऊपर इसी का ओढ़ना होगा। और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, हम किसी शख्स को उसकी कुदरत से ज्यादा कोई काम नहीं बतलाते। वही लोग जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो कुछ इनके दिलों में कीना था हम इसको दूर कर देंगे। शोहर बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बदगुमानी, जन्नत से बाहर नहरे हयाबान में नहलाया जाएगा दिल साफ। सासू अम्मा भी जन्नत में जाएंगी लेकिन आपका दिल उनके बारे में धो दिया जाएगा। बहू बेगम भी जन्नत में जा रही हैं और सास जाके हेलो ये यहाँ भी आ गई अल्लाह की बंदी, नहीं दिल पहले धुले होंगे। साथ काम करते हुए लोगों से मिजाज नहीं मिलता, कोई बात नहीं दिल धुले होंगे। तो जन्नत की नेमत है दिलों का धुलना, इस दुनिया में दिल धो ले, दिलों को पाक कीजिए, क्योंकि लोग मुख्तलिफ होते हैं, गलत नहीं होते। देवरानियाँ जेठानियाँ चार पांच एक घर में सब मुख्तलिफ हैं, सबकी अपनी जगह है। ये सब आंखों के तारे बन जाएंगे। कई काम आप नहीं कर सकते, वो दूसरा करता है, वो पता तब चलता है जब बंदा अकेला रह जाता है। तो लिहाजा जन्नत में कीने खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? इनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो लोग कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया और हमारी कभी रसाई ना होती अगर अल्लाह हमको ना पहुंचाता। वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची बातें लेकर आए थे। और इनसे पुकार कर कहा जाएगा कि इस जन्नत के तुम वारिस बनाए गए हो अपने आमाल के बदले। यह है फेथ इन एक्शन। वारिस क्यों? अम्मा अब्बा का घर है। मेरे अम्मी अबू का घर है जन्नत, वो वहां से निकाल ले गया, हम वहां जा रहे हैं। अमल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये नहीं कहा कि ख्वाहिशें रखते थे या दुआएं करते थे। अब सुनिए वो मुकाम जिसकी वजह से सूरत का नाम अलराफ है, और अहले जन्नत अहले दोजख को पुकारेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वादा फरमाया था, हमने इसको सच्चा पाया, यानी वाकये के मुताबिक। बस तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था, तुमने भी इसको वाकये के मुताबिक पाया? वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो इन जालिमों पर जो अल्लाह की राह से मुंह फेरते थे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें रूह गर्दानी करने वाला न बना, और इसमें टेढ़ापन जनी कजी तलाश करते थे, और वो लोग आखरत के भी मुनकर थे। और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी, और अराफ के ऊपर बहुत से लोग होंगे, वो लोग हर एक को इनके क्याफों से यानी इनकी निशानियों से पहचानेंगे, और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय बाय नहीं कहेंगे। अभी ये अहले आराफ दोजख और जन्नत के दरमियान जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, और इसके उम्मीदवार होंगे यानी पोस्ट पोन्ड रिजल्ट्स। इनका रिजल्ट थोड़ा सा पेंडिंग में है। कुछ नेकियां हैं जो जन्नत में बुला रही हैं, और कुछ गुनाह है जो जन्नत से रोक रहे हैं। सोचिए किसी गुनाह को मामूली न जाने, इब्लीस सिर्फ एक सजदे के इनकार से जन्नत से निकाल दिया गया था, हम इतनी सरकशियों के बाद कैसे दाखिल होंगे? और जब इनकी निगाहें अहले दोजख की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे ए हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना कीजिए। दुआ पढ़ लीजिए, कौन सी आ गई आगे? कालू रब्बना ला तजअलना माअल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए रब हमें इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजिए। आप भी इस दुआ को मांगा करें जब किसी को गलत काम करता देखें, कि अल्लाह अगर तेरी पकड़ आ गई तो हमें ना उसमें लेना। तो ईमान से मुतल्लिक एक आयत इस रुकू में 42 आरा, हर इंसान पर इसकी ताकत के बराबर बोझ डाला जाता है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। दुआ किया करें कि रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु लल्लज़ीना मिन कब्लिना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह। तो फेथ इन एक्शन, किसी भी नेकी को हल्का नहीं जानना, क्या पता यही वो नेकी हो जो आपको जन्नत में लेके जाएगी जो आप छोड़ रही हैं। किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना, क्योंकि अल्लाह बड़ा है जिसकी नाफरमानी होगी। कौलो अमल से अहकाम इलाही की तकजीब नहीं करनी, यानी ना मुंह से कुछ बोलना है और ना अमल से कुछ करना है। आगे रुकू नंबर 6, 48 से 53, दीन को खेल तमाशा बनाने वालों का इंजाम। वनादा असहाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, और अहले आराफ बहुत से आदमियों को जिनको इनके क्याफे से पहचानेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने आप को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम ना आया, क्या ये वही है जिनकी नस्बत तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला इन पर रहमत ना करेगा? इनको यूं हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ खौफ है और ना तुम मखमूम होगे यानी गमजदा, और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे, जरा सा दर्द महसूस करें, अनफीद वालेना मिनल माई, हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी ही डाल दो या और ही कुछ दे दो जो अल्लाह ने तुमको दे दिया है, यानी जन्नत का कोई अंगूर, कोई खजूर, कोई खोशा तो हम पे डालो। जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को काफिरों के लिए हराम कर दिया, बंदिश कर दी। कौन काफिर? अब यहाँ देखिए काफिर से हमारे दिन में कौन सा काफिर आता है, और यहाँ क्या है, अल्लज़ीना, वो काफिर जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहवो लायब बना रखा था। कितने मुसलमान इस आड़ में आते हैं, दीन को खेल तमाशा समझा हुआ था, और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था। बस हम भी आज के रोज इनका नाम भूल जाएंगे जैसा कि वो इस दिन को भूल गए थे, जैसा ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। और हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने इल्मे कामिल से बहुत वाज़ेह करके बयान कर दिया है। वो ज़रिया हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं। इन लोगों को और किसी बात का इंतज़ार नहीं, सिर्फ इसके आखिरी नतीजे का इंतज़ार है। जिस रोज़ इसका आखिरी नतीजा पेश आएगा, और इस रोज़ जो लोग इसको पहले से भूले हुए थे यूं कहेंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे। सो अब क्या कोई हमारा सिफारशी है कि हमारी सिफारिश कर दे, या क्या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग इनके अमाल जो हम किया करते थे बरखलाफ दूसरे अमाल करें, इन इन कामों को छोड़कर दूसरे करें। बेशक इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया और ये जो जो बातें तराशते थे सब गुम हो गई, यानी वक्त पड़े इनके कोई काम ना आया। तो एक आयत ईमान से मुतल्लिक 52 आरा कुरान एक खूबसूरत हिदायत नाम है, गाइड बुक है, लगती है आपको नेविगेटर लग रहा है, जीपीएस है, आगे रखेंगे तो फिर ही चलेंगे ना। तो अपनी ज़िंदगी के हर मामले में कुरान को आगे रखिए। फेथ इन एक्शन के पॉइंट के हैं कि अपने वक्त को सोच समझ कर और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। नेकियां करने के लिए कल का इंतज़ार नहीं करना, आज से ही शुरू कर दीजिए। अब आगे से तमहीद बन रही है अंबिया कराम के कस्सों की, रुकू नंबर 7, 54 से 58। मोमिन का दिल जमीन की तरह जरखेज होता है। इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया है, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो रात से दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वो रात उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब इसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो अल्लाह ही के लिए खालिस है, खालिक होना और हाकिम होना बड़ी खूबियों से भरा हुआ है। अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है, आपको भी अल्लाह की खूबियों का अंदाज़ा हो रहा है कुरान पढ़ के, इसलिए अब उससे मांगिए। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ करो गिड़गड़ा के भी और चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला इन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं, और दुनिया में भी इसके बाद कि इसकी दुरुस्तगी कर दी गई। फसाद मत फैलाओ, करप्शन ना करो, और तुम लोग अल्लाह की इबादत करो इससे डरते हुए और उम्मीद रखते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नज़दीक है, और वो ऐसा है कि अपनी बारान रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम इस बादल को किसी खुश्क जमीन की तरफ हांग कर ले जाते हैं, फिर इस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर इस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। यूं ही हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे ताकि तुम समझो। और जो सुथरी ज़मीन होती है इसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, और जो ख़राब है इसकी पैदावार बहुत कम निकलती है। इसी तरह हम दलाइल को बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो शुक्र करते हैं। क्या पता चला कि शुक्र करना है? इंशाल्लाह हमने भी और आपने भी अल्लाह की सारी नज़रें ईमान वाले पे हैं। आप देखिए जो ईमान ले आता है ना, अल्लाह ताला उसको खुशी और गम के तरीके सिखा देता है। तो जुमला लिखिए कि ईमान वाला ना खुशियों में आपे से बाहर होता है और ना गम में मायूस होता है। बैलेंस उम्मतम वसत जो हुआ, अल्लाह करे कि हम खुशियों में अल्लाह को भी खुश करें। फेथ इन एक्शन, दुआ आजजी से मांगनी है, दुआ में ज्यादती नहीं करनी, दुआ करते हुए रियाकारी नहीं करनी, यानी दिखा दिखा के रुला के कलाबे मिला कर मसनू अंदाज से दुआएं नहीं करनी। रुकू नंबर 8, 59 से 64। यहाँ से अब पारे के एंड बल्कि अगले पारे में भी अम्बिया कराम के किस्से पहली दफा आ रहे हैं तरतीब के साथ। साहिब शरीयत अम्बिया में पहला नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, तो यहाँ रुकू 8, 59 से 64 में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ईमान का इम्तिहान है, और हमें शर्म आएगी अपने ऊपर जब हम अपने इम्तिहानों को इम्तिहान कहेंगे। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमे बुदुल्ला, हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद होने के काबिल नहीं, मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। अब यहाँ इसको नोट करें, आप देखेंगे हर पैगंबर की इब्तदाई दावत चाहिए। इससे पता चलता है कि दीन फिक्स से नहीं अकायद से बुनियादी असासी बातों से शुरू करना चाहिए। अब रिएक्शन देखें, सबको रिएक्शन भी एक ही जैसा मिलेगा, यानी इलीट या क्रीम ऑफ द सोसाइटी दुश्मनी में आ गई। इनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा हम तो आपको सरी गलती में देखते हैं, उन्होंने फरमाया मेरी कौम मुझ में तो जरा भी गुमराही नहीं, लेकिन मैं परवरदिगारे आलम का रसूल हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही भी करता हूँ। मैं अल्लाह की तरफ से इन उमूर की खबर रखता हूँ जिनकी तुमको खबर नहीं। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई, ताकि वो शख्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। देखिए, नबियों की मोहब्बत एक एक लफ्ज से टपक रही है। सो वो लोग इनको झुठलाते ही रहे, तो हमने नूह अलैहि सलाम को और इनको जो इनके साथ कश्ती में थे बचा लिया। ईमान की ताकत ने टूटी हुई कश्ती में बचा लिया। लिखिए, ये था वो थीम जो आपको शुरू में दिया था। हर नबी की कौम में थोड़े से लोग ईमान वाले थे, जैसे आज उम्मत मुस्लिमा में हर एक ईमान के लिहाज से मुख्तलिफ दर्जों में, कामिल और मुकम्मल ईमान पर बहुत थोड़े। टूटी हुई कश्तियाँ ईमान की ताकत से किनारों पे लग जाती हैं। आगे सूरत हूद में पढ़ेंगे, इसी तूफान में वो बेटा समंदर में डूब गया जिसका दिल ईमान से खाली था। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था, इनको हमने गर्क कर दिया, बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे। क्या पता चला, हर नबी की कौम के वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो नबी के साथ चले, कदम से कदम मिलाया, अल्लाह ने उनको तूफानों और बड़ी बड़ी आफात से बचा लिया। लोग आमतौर पे दीन के लिए कुर्बानी नहीं देते, लेकिन अपनी जात और ख्वाहिशात के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। अगर किसी को इस पे शक हो तो बाद में मेरे पे एतराज़ करे कि ये जुमला आपने क्यों बोला। मुझे तो लगता है हम सारा वक्त अपने ही बारे में परेशान रहते हैं। आगे एक और कौम का किस्सा, रुकू नंबर 9, 65 से 72, कौमे आद का बागियाना रवैया, बगावत। इन्होंने बगावत की, अल्लाह ने अपनी एक मखलूक यानी हवाओं को कहा तुम भी बगावत कर दो। वइला आद अखाहुम हूदा काल या कौमे बुधुल्ला, और हमने कौमे आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहि सलाम को भेजा। देखिए, नबी को भाई कहा जा रहा है प्यार से। उन्होंने फरमाया, मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बस क्या तुम नहीं डरते? और इनकी कौम में जो बड़े लोग काफिर थे, उन्होंने कहा, हम तुमको कम अकली में देखते हैं और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में समझते हैं। उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम, मुझ में जरा सी भी कम अकली नहीं। देखिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए आज मुसलमानों को, आज के दीनदारों को ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि आई एम नॉट स्टूपिड, तो मुझे ऐसे क्यों कहते हो? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ जो गलत बातें सुन सुन के बड़ी हो रही है ना, उनमें ये डिफेंस है, वो गलत बात नहीं सुनते। लेकिन मैं परवरदिगारे आलम का भेजा हुआ हूँ, पैगम्बर हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ, और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई, ताकि वो तुमको डराए और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको कौमे नूह के बाद जानशीन बनाया और डेल डोल यानी जिस्म में तुमको फैलाव ज्यादा दिया, सो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुमको फलाह हो। उन्होंने कहा, क्या आप हमारे पास इस वास्ते आए हैं कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे इनको छोड़ दें? यानी हैरत हो रही है उनको, बस हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे पास मंगवा दो। देखिए जिठाई उनकी, अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया, बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गजब आया ही चाहता है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ठहरा लिया? इनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी, बस तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। गरज हमने इनको और इनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया। ये है पावर ऑफ द फेथ, नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब। और इन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था, और वो ईमान लाने वाले न थे। देखिए जरा अम्बिया कराम के किस्सों से क्या पता चल रहा है हमें, ईमान वाले थोड़े ही होते हैं। इस रुकू में एक आयत ईमान से मुतल्लिक, आराफ 72, इसका मैसेज क्या है? बचेगा वही जिसमें खैर होगी, यानी ईमान। फेथ इन एक्शन, आबाव अजदाद की अंधी तकलीद नहीं करनी, पिछली कौमों के अंजाम से सबक हासिल करना है। रुकू नंबर 10, 73 से 84, कौम समूद और इनका इबरतनाक अंजाम। वइला समूद अखाहुम सालिहा काल या कौमे बुदुल्ला, और हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़े दलील आ चुकी है, ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, बस तुम इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और इसको बुराई के साथ हाथ भी ना लगाना, कहीं तुमको दर्दनाक अजाब आ पकड़े, और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन में रहने का ठिकाना दिया कि नरम ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते हो, बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। इनकी कौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे, उन्होंने गरीब लोगों से जो कि इनमें से ईमान लाए थे, नोट कीजिएगा ईमान की ताकत, पूछा, क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? डाउट क्रिएट कर रहे हैं नबी के बारे में, जैसे आज भी कुछ लोग कुछ दीनदारों के बारे में शुबहात दिलों में डाल देते हैं और लोग आना छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, बेशक हम तो इस पर पूरा यकीन रखते हैं जो इनको देकर भेजा गया है। वो मुतकब्बिर लोग कहने लगे, तुम जिस बात पर यकीन लाए हुए हो, हम तो इसके मुनकरीन हैं। बस उन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ऐ सवाले, जिसकी आप हमको धमकी देते हैं, इसको मंगवाइए अगर आप पैगम्बर हैं। बस इनको जल्जले ने आप पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए, यानी गिर गए मुंह बल। इस वक्त साले अलैहि सलाम इनसे मुंह मोड़ कर चले गए। अब जरा सा हज़रत साले का दर्द महसूस करिए, आपका एक बच्चा घर छोड़ दे तो आपके दिल का क्या हाल हो, और नबियों को अल्लाह ने क्या तकलीफें दी, और फिर उससे उन्होंने सब्र किया। फरमाने लगे, मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। यू डोंट लाइक वेल विशर्स, सिंसियर, जो तुम्हारे लिए जलते कुड़ते हैं तुम्हें वही अच्छे नहीं लगते। और एक कौम अपने अंजाम को पहुंची और दूसरी, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, तुम ऐसा फुहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया। तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद ही से गुजर गए हो, और इनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे, इन लोगों को बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं, यानी थ्रेट कर रहे हैं, निकाल दो इनको इधर से, हमारे रंग में भंग क्यों डालते हैं ये। बस हमने लूत अलैहिस्सलाम को और इनके घर वालों को बचा लिया सिवाय इनकी बीवी के, कि वो इन्हीं लोगों में रही जो अजाब में रह गए थे, और हमने इन पर खास तरह का मी बरसाया, बस देखो तो सही इन मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ। दो आयात हैं ईमान से मुतल्लिक, 75 पारा, महरूम तबका अक्सर हक का साथ देता है क्योंकि उनके पास कोई रुकावटें नहीं होती ना, ना उनके सूद पे बिजनेस है, ना उनको कोई बड़ी बड़ी चीज़ों से कोई रोक रहा है। और आयत 76 आराफ का टॉपिक, तकब्बुर हक की पहचान छीन लेता है। असल में पैसे वाले या रुतबे वालों के और हक के बीच में बहुत रुकावटें होती हैं। गरीब गुरबा पहली लेन में से एग्जिट लेने वाले लोग होते हैं, अमीर उमरा चौथी लेन में से आते हैं, उनका आना मुश्किल होता है। इसमें हम जिन्स परस्ती की बात हुई, कल इसका आगाज करने वाली कौम अल्लाह के अजाब का शिकार हुई, आज भी इसको अपनाने वाले अल्लाह की पकड़ का इंतजार करें। आपका मेरा काम है अपनी नस्लों को ये वाक़ियत पढ़ा दें कुरान की जुबान, कुरान के तर्जमे में। और अब आखिरी चंद आयतें पारे की, 85 से 87, कौम शुएब और इनका बिगाड़। अगले पारे में ये किस्सा कंटिन्यू होगा। वइला मदयना अखाहुम शुएबा काले या कौमे बुदुल्ला, आपको पैगाम तो एक ही लगा ना नबियों का, क्या? और हमने मदियन की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा, उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है, बस तुम नाप और तोल में कमी ना करो, यानी उसको पूरा किया करो, और लोगों को इनकी चीज़ें कम करके मत दो, और वे ज़मीन में इसके बाद कि इसकी दुरुस्तगी कर दी गई फसाद मत फैलाओ, ये तुम्हारे लिए नफ़ामंद है अगर तुम तस्दीक करो, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको और इसमें टेढ़ापन तलाश करने में लगे रहो, और इस हालत को याद करो जब तुम कम थे। इसको नोट कीजिए, हक वाले हमेशा कम होते हैं, फिर अल्लाह ने तुमको ज्यादा कर दिया और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मुझे भेजा गया है ईमान ले आए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए, तो जरा ठहर जाओ यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है, वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। क्या सीधी साफ सुथरी नपी तुली दावत थी नबियों की। 3 आयत इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक, 85 आराफ, नाप तोल की कमी 72 खयानत है, आराफ 86 लोगों को सीधी राह से बहकाने वाले अजाब से दो चार होंगे, आराफ 87 अल्लाह बेहतरीन हाकिम है। आपके मेरे लिए फेथ इन एक्शन, जिंदगी में हर किस्म की हेरा फेरी से बचना। ये सिर्फ हाथ में तराजू लेकर ही नहीं होती, जिम्मेदारियों का हसन अंदाज से पूरा न करना इसकी बदतरीन मिसाल है। नेकी के रास्ते में रुकावट बनने वालों का रास्ता रोकना है, और इसके लिए आपको मुझे ईमान की शाखों को पढ़ना। आज की हमारी ईमान की शाख नंबर 15, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, इख्तराम और अदब के वाजिब होने पर ईमान लाना। यानी हम सिर्फ वी लव जीसस की तरह वी लव मोहम्मद नहीं कह सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इज्जत भी करनी एहतराम भी करना। रसूलुल्लाह की मोहब्बत अजमत का नक्श दिलों पर होना चाहिए। अल्लाह ने अपनी इताअत के बाद नबी की मोहब्बत को ईमान की पहली शर्त करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मेयार कि अपनी जान और हर चीज़ से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत हो। रसूलुल्लाह से बात करने और मजलस के आदाब तक अल्लाह ने सिखा दिए। सूरत फत की आयत 9 में फरमाया, ली तुमिनु बिल्लाही व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, ताकि ये लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और इसका साथ दो और इसकी तज़ीम और तौकीर करो। और हुजरात पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदियल्लाहि व रसूलिही, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी ना करो और उससे डरो। अल्लाह के नबी की इज्जत ना करने वालों को क्या वईद है। सूरत हुजरात आयत 2, ला तरफ़ौ अस्वातकुम फौक सौत नबी, नबी की आवाज़ से बुलंद न करो और न नबी के साथ ऊंची आवाज़ से बात करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा किया कराया सब गलत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। तो जब नबी के सामने बात ऊंची नहीं हो सकती, तो नबी की बात के ऊपर किसी इंसान की बात कैसे आ सकती है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब भी करते थे और मोहब्बत भी करते थे। इसके कई दलाइल हैं, जिसमें से एक दो आपके लिए। निसाई की रिवायत है हज़रत बरा बिन आज़ब से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह के हमराह हम निकले एक जनाजे में, जिस वक्त कब्र तक पहुंचे तो कब्र तैयार नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी बैठ गए और हम भी आपके करीब बैठ गए, जैसे कि हम लोगों के सरों पर परिंदे थे। यानी बाअदब बानसीब खामोश होकर अदब से बैठते थे। आज जहाँ नबी की बात हो रही हो हमें भी ऐसे करना है। और इसी से फिर अगली शाख 16 नंबर, दीन के साथ मोहब्बत का हाल ये हो कि आग में फेंका जाना तो महबूब हो, लेकिन इस्लाम छोड़कर कुफर इख्तियार करना कबूल ना हो। आप में से बहुत सारों ने यह हदीस पढ़ी होगी। बंदा मोमिन को दीन से इतनी मोहब्बत होती है कि वो इसके साथ चिपक जाता है। तो इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम की बरकात में से एक यह है कि पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। खुशकिस्मत इंसान है जो दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं, कुफर को छोड़कर उसके अंधेरों को छोड़कर इस्लाम के नूर की तरफ आते हैं। तो इसके बरक्स अगर कोई इस्लाम से मुर्तद हो जाए, कुफर इख्तियार कर ले, तो वो बदकिस्मत इंसान होगा जो रोशनी से अंधेरों में जाएगा। आपने पीछे भी आयत पढ़ी सूरह मायदा में, अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। इर्तदाद की सज़ा, मुसलमान हुक्मरान उसका सर का बोझ उसके जिस्म से उतारेंगे, लेकिन इसकी शरायत है। वो शख्स आकिल हो, बालिग हो, होश में हो, मजबूर ना हो, जान का खतरा ना हो। मुसनद अहमद की रिवायत 3797 इब्ने मसूद से, कह रहे हैं कि मस्जिद में दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह के नबी आ गए, तो आपने फरमाया सवाल करेगा जो तुझे दिया जाएगा। फिर उन्होंने दुआ की। क्या पता चला कि इंसान के दिल में हमेशा नबी की और अच्छे लोगों की दुआएं लेने का शौक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे ऊपर हकूक है ना, वो तो पूरे नहीं हो सकते। एक शेर पे इस टॉपिक को पूरा करके आज की दुआ पे चलेंगे। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें पास नहीं। ये आज के मुसलमान से सवाल है। आज की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमान ला यरतद्दु, आमीन तो कहिए, आप दिल में साथ पढ़ते भी रहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमान ला यरतद्दु व नईमन ला यनफदु व मुराफ़क़तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आला गुरफिल जन्ना जन्नतिल खुल्द। मुस्नद अहमद की रिवायत 3797। या अल्लाह, मैं तुझसे ऐसा ईमान मांगती हूँ जिसमें इर्तदाद ना हो, यानी मैं दीन ना छोड़ूँ, और ऐसी नेमत मांगती हूँ जो कभी ख़त्म ना हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत जन्नत के आला बाला खानों में मांगती हूँ, यानी जन्नत खुल्द मांगती हूँ। अल्लाह आपको मुझे ऐसी ही जन्नत के करीब कर दे और इसी के आमाल करने वाला बना दे। इसी से मिलती हुई एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद्दु व नईमन ला यनफदु व मुराफ़क़तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आला गुरफिल जन्नती जन्नतिल खुल्द। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।